संघर्ष की भंगिमाएं। रायपुर के जमीन ने हबीब अहमद खान को जो कुछ दिया उससे गरीब की गठरी की तरह अपने कलेजे चिपकाकर वे नागपुर आ गए। नागपुर के मैरिस कॉलेज में, उस वक्त नागपुर का मैरिस कॉलेज एक जाना माना कॉलेज था, वहाँ से बीए करना खास अहमियत रखता था। यद्यपि उसी साल रायपुर में भी नया कॉलेज खुला, छत्तीसगढ़ कॉलेज, लेकिन यह कॉलेज नया था और वहाँ अच्छी और महत्वपूर्ण शिक्षा गुंजाइश कम थी। हबीब अहमद मैट्रिक की परीक्षा में अव्वल रहे थे, इसलिए अनेक लोगों की अपेक्षाएँ बढ़ गई थी। स्कूल के सारे अध्यापकों की नज़रें इस सोनार पर विद्यार्थी पर टिकी थी। उन्होंने एकमत से कहा कि अभी बहुत जहीन है, इसलिए उसे साइंस लेकर बीएससी करना चाहिए। उसमें साइंस की डिग्री को सबसे ऊंची और अच्छी माना जाता था। आमतौर पर आर्ट्स में वही लोग प्रवेश लेते थे जिनके नंबर या तो कम होते थे या जिन्हें महज एक डिग्री की जरूरत होती थी। कला या साहित्य जैसे विषयों की तरफ आमतौर पर रुझान बहुत कम होता था, लेकिन हबीब अहमद खान ने बीए में दाखिला लिया। उनके वालिद चाहते थे कि वे आईसीएस की परीक्षा पास करके प्रशासनिक सेवा में जाए। शुरू में शायद हबीब तभी रजामंद होंगे, लेकिन रायपुर की दुनिया छोड़कर एक ज़्यादा बड़ी दुनिया में परिचय प्राप्त करने के बाद उनकी नीयत और तबीयत बदल गई। नागपुर के मैरिस कॉलेज में भी उनकी रंगमंची गतिविधियाँ जारी रहीं। किशोर साहू उनसे सीनियर थे और कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में काफ़ी दखल करते थे। कॉलेज में खासतौर पर मौकों पर नाटकों का मंचन भी हुआ करता था, और जब भी हबीब अहमद को मौका मिला वे नाटकों में जरूर हिस्सा लेते। यह वह दौर था जब हबीब तनवीर इस उदरगुण बोन में थे कि बीए करने के बाद क्या किया जाए। कला और साहित्य में दिलचस्पी बरकरार थी, खासतौर से अंग्रेजी और उर्दू साहित्य में उन्होंने खूब पढ़ा, लेकिन भरपूर फिल्में देखने का शौक भी बरकरार रहा। नागपुर के प्रवास के दौरान उन्होंने अनेक विदेशी फिल्में देखी जिनका अवसर उन्हें रायपुर में नहीं मिला था। विदेशी फिल्मों का कथानक, उनके अभिनेताओं की अभिनय क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठताओं ने उनके मन में फिल्मों के प्रति आकर्षण को बढ़ा कर दिया, लेकिन फिल्म में प्रवेश पाना आसान नहीं था। छिटपुट प्रयत्नों के बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एमए उर्दू में दाखिला ले लिया, लेकिन एमए करने में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। एक नज़र फिल्मों की तरफ थी और दूसरी वे अन्य विकल्प तलाश रहे थे। एमए प्रीवियस करते हुए उन्होंने विभिन्न मुद्राओं में अपने कई फ़ोटो खिंचवाए और मुंबई के कई प्रोड्यूसरों के पास भिजवाए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सभी अखबारों में उन्होंने एक विज्ञापन देखा तभी अखबारों में उन्होंने एक विज्ञापन देखा दूसरे महायुद्ध का दौर था। ब्रिटिश सरकार को जल सेना में अफसरों की जरूरत थी। हबीब अहमद खान ने अर्जी दी, रायपुर और नागपुर के परीक्षाओं में उत्तीर्ण भी हो गए, लेकिन आखिरी इम्तिहान में रह गए। यह इम्तिहान बड़ा दिलचस्प था, पुल बनाकर नदी पार करने का इम्तिहान। जरूरत का सभी सामान मुहैया करवा दिया गया था और एक निश्चित समय में उन्हें पुल बनाकर नदी के उस पार जाना था। वे तरह तरह की तरकीबें सोचते रहे कि पुल कैसे बनाया जाए, और वक्त गुजर गया। युवक हबीब आना फान में कोई इरादा इजाद नहीं कर सके। यह उनकी कमजोरी नहीं थी, उनकी शख्सियत का हिस्सा थी। वे हर एक काम को करने में अच्छा खासा समय लेते हैं, जल्दबाजी में काम करना उनकी फितरत नहीं। पहली बार में मुकम्मल तौर पर कुछ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा करते रहे। यह बात बहुत अरसे बाद जाहिरा तौर पर उस तब सामने आई जब उन्होंने रंगमंच के निदेशक के तौर पर अपनी जगह बनाने शुरू की। हर एक चीज़ की बारीकी से देखना, उसके हर पहलू पर गौर करना और फिर उसकी आजमाइश करना। आजमाइश का यह सिलसिला भी काफ़ी लंबा चलता है। इसलिए हुनरमंदी ने हबीब अहमद खान को जल सेना के अफसर होने से बचा लिया। जल सेना के अफसर के रूप में हबीब अहमद खान निहायत विफल रहते, इसमें किसी तरह के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। बहरहाल, जल सेना के इम्तिहान में बैठना और फेल होना, दोनों ही बातों को उन्होंने अपने हक में मोड़ लिया। जल सेना के इंटरव्यू के लिए रेवड़ी का जो पास मिला था उससे उन्होंने मुंबई जाने का रास्ता निकाल लिया। एमए प्रीवियस करने के बावजूद एमए फाइनल करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी, लेकिन इस दौरान उर्दू और अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का जो मौका मिला उसने उनकी शायरी को परवान चढ़ाने में मदद की। बम्बई की जिंदगी उनके लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। दिमागी और रूहानी नज़रिए से उनके पास खासी दौलत थी। उर्दू अदब और अभिनय की अच्छाइयों तथा बुराइयों फ़र्क करने की तमीज़ पैदा हो चुकी थी। हिंदुस्तानी जुबान के माहौल में पकड़ मजबूत हो गई थी। इसके बावजूद मायावी तौर पर वे पूरी तरह फक्कड़ थे। संघर्ष के इस दौर में घर से पैसा मंगवाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। फक्कड़ का आलम यह था कि शुरुआती तौर में चंद रोज उन्हें बम्बई के फुटपाथ पर रातें गुजारनी पड़ी, लेकिन हार न मानने वाले जिद ने आखिरकार उनका साथ दिया। फुटपाथ से जिंदगी का दौर ज़्यादा लंबा नहीं रहा, क्योंकि वे छोटे मोटे कई तरह के काम कर सकने में समर्थ थे। दाल रोटी के संघर्ष के बाद अच्छी फिल्में देखना और उस पर टीका टिप्पणी करना उनकी ज़िंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुकी थी। बम्बई पहुँचे हुए करीब हफ्ता भर भी गुजरा था कि एक अप्रत्याशित घटना हो गई। बम्बई के मेट्रो सिनेमाघर में एक विदेशी फिल्म लगी थी, पिक्चर ऑफ डरियम ग्रे, जो फिल्म जिस उपन्यास पर आधारित वह उन्होंने पढ़ा हुआ था। एक रेस्तरा में बैठे हुए इस फिल्म और उसके मूल उपन्यास पर कुछ लोगों से चर्चा कर रहे थे कि एक अजनबी शख्स उनके पास है। उसने कहा, मैं आपकी बातचीत सुन रहा था, लगता है कि फिल्मों में आपकी गलत दिलचस्पी की है, क्या आप फिल्म में अभिनय करना पसंद करेंगे? अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। हबीब अहमद खान के प्रस्ताव मिला तो बरसों पुराने मुराद को पूरा होने के आसार नजर आने लगे। उस फिल्म में उन्होंने नायक की भूमिका अदा की, लेकिन कुछ कारणों से फिल्म जनता तक नहीं पहुंच सकी। फिर भी फैज जमाने की उन्हें जमीन मिल गई थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात सोहो हाउस के मालिक मोहम्मद ताहिर से हुई। ताहिर शायरी के रसिया थे और तब तक अपनी तत्कथ की तुर्सियों ने अंदाज के तरन्नुम की वजह से हबीब अहमद खान आवाम पसंद शायर होने लगे थे। उन्होंने अपना तखल्लुस रखा तनवीर और अपने नाम के आगे या अहमद खान को हटाकर हबीब तनवीर के नाम से शायरी शुरू कर दी थी। मोहम्मद ताहिर हबीब तनवीर की शायरी से मुतासिर थे और मुशायरों आदि के आयोजन के लिए उन्होंने बतौर सेक्रेटरी अपना पास रख दिया। यह सन 1945 का माहौल था। ताहिर मियाँ के गोला बारूद की फैक्ट्री थी जिसमें खासा मुनाफा हो रहा था। मोहम्मद ताहिर के सेक्रेटरी की हैसियत से हबीब तनवीर का दायरा बड़ा होने लगा, मुशायरों में नाम कमाने लगे थे। उसी दौरान ऑल इंडिया रेडियो बम्बई के डायरेक्टर जेड बुखारी से मुलाकात हुई, जो उन्हें हबीब तनवीर की प्रतिभा को पहचानने में देर नहीं लगी। बुखारी साहब के बारे में चंद अल्फाज कहना नहायत ज़रूरी सा लगता है। उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो अपने आरंभिक दौर में था। रेडियो सुनने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही थी और उसे देखते रेडियो कार्यक्रमों में नयापन लाने के लिए नहायत ज़रूरी थी। संगीत के कार्यक्रमों के अलावा दूसरे लोकप्रिय कार्यक्रमों के लिए बुखारी साहब जैसे लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो को नहीं पहचान दी। बुखारी साहब नए प्रतिभावान लोगों को ऑल इंडिया रेडियो की तरफ खींचने में माहिर थे। नए लेखकों, शायरों और कलाकारों से नए नए प्रोग्राम तैयार करवाने में उन्होंने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। हबीब तनवीर चंबुक की तरफ बुखारी की तरफ खींचे चले गए और रेडियो के लिए नाटक लिखने और कई तरह के कार्यक्रम पेश करने लगे। आवाज़ अच्छी खासी थी, कलम में जोर था, शायरी का अंदाज और खुशनुमा तरन्नुम, यानी वे सब कुछ रेडियो के लिए नहायत ज़रूरी गुण थे, हबीब तनवीर में थे। और देखते देखते हबीब तनवीर ऑल इंडिया रेडियो मुंबई में छा गए। बम्बे रेडियो स्टेशन से हबीब तनवीर की जो फिल्में समीक्षाएं प्रसारित होती थी वे इतनी सटीक, तुर्श और बेबाक होती थी कि मशहूर और विवादास्पद दोनों बन गए। तभी फिल्म इंडिया का संपादक बाबूराव पटेल ने उन्हें अपने सीनियर असिस्टेंट एडिटर के रूप में बुला लिया। उस वक्त फिल्म इंडिया एक ऐसी पत्रिका थी जिसका पूरे देश में, खासतौर से बड़े शहरों में सिनेमा देखने में दर्शकों में खासा दबदबा था। हबीब तनवीर की समीक्षाओं टिप्पणियों ने फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्हें कई प्रस्ताव भी मिलने लगे। फिल्म इंडिया में रहते हुए उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, कई फिल्मों के गीत लिखे, विज्ञापन फिल्मों के लिए आलेख तैयार किया। बम्बई की फिल्मी दुनिया में एक जाना माना नाम बन गए। फिल्म इंडिया छोड़ने के बाद भी ये फिल्मी पत्रकारिता से लंबे अरसे तक जुड़े रहे। अनेक पत्र और पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते रहे। इसका उन्हें दोहरा लाभ हुआ। पहला तो यह कि अपने विवेक संगत तीखे प्रहारों की वजह से वे मुंबई की फिल्म जगत में एक समीक्षक और आलोचक के रूप में अच्छी तरह प्रतिष्ठित हो गए। दूसरी ओर उनकी अभिनय क्षमता को अभिव्यक्ति का अवसर मिला जो अब तक लोगों के सामने नहीं आई थी। ख्वाजा अहमद अब्बास अपनी पहली फिल्म धरती के लाल बना चुके थे, जो विजन भट्टाचार्य के प्रतिष्ठित नाटक नबान और कृष्णचंद्र की कहानी अन्नदाता पर आधारित थी। शंभु मित्र, तृप्ति मित्र और अतिरिक्त रंगवंशी अनेक श्रेष्ठ कलाकारों ने अभिनय किया था। अब्बास की इस फिल्म में शशि के दर्द का तीखा एहसास था, जिससे अभिभूत होकर हबीब तनवीर ख्वाजा अहमद अब्बास के मुरीद हुए और उसके बाद ये कई फिल्मों में काम किया। इनमें राही, दिया जले सारी रात, आकाश जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्म राही में देवानंद के साथ सहनायक थे। शांताराम अम्बेडकर की फिल्म लोकमान्य तिलक में उन्होंने जिलर की भूमिका अदा की। जिया सरहदी की फिल्म फुटपाथ, एस के ओझा की फिल्म नाज, इसरा मीर की फिल्म बीते दिन आदि में प्रमुख भूमिकाओं में उतरे। बीते दिन में संवाद और गीत भी हबीब तनवीर ने ही लिखे थे। फिल्मों में काम करने का भूत कैसे उतरा, इसका विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि फिल्मों में अभिनेता की दृष्टि से हबीब तनवीर को सफलता नहीं मिली और हताश होकर उन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़ी। सच तो यह है कि एक छोटे से अरसे में इतनी फिल्मों में अभिनय करने के बाद साधारणतः कोई भी अभिनेता अपने आप को खुश किस्मत समझता है और फिल्मों को समर्पित हो जाता। इतना यश, सुविधाजनक जीवन जीने के सारे साजो सामान और समाज में एक प्रतिष्ठापूर्ण स्थान, सब कुछ यदि एक साथ एक ही तरह के काम में प्राप्त हो सकता है तो फिर एक आदमी को इसके अलावा और क्या चाहिए। लेकिन हबीब तनवीर एक आदमी नहीं थे। उन्हें इन सब के अलावा जो चीज़ चाहिए थी वो फिल्म में काम करने से नहीं मिल सकती थी। हुआ थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने अर्जित अनुभवों को संप्रेषित करने का उन्मुक्त अवसर। फिल्मों का मायाजाल हबीब तनवीर के अंतःचेतना को अपनी गिरफ्त में लेने में नाकाम हुआ। क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके कारण खोजते हुए हमें अनुमान या संभावनाओं का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत है सिर्फ एक तटस्थ मानसिकता के साथ उन स्थितियों का विवेचन करने की। रायपुर और खासतौर से नागपुर के अजीत अनुभवों ने युवक हबीब के मन को फिल्मों की जबरदस्त तरीके से आकर्षित किया था। उन्हें लगा कि फिल्मों में अभिनय के माध्यम से वे अपने जीवन का सबसे अच्छा योगदान दे सकते हैं। अनेक विदेशी फिल्मों की श्रेष्ठता, उनके कथानकों और कलात्मक स्तर को देखकर वे उस नतीजे पर पहुंचे थे कि अपने देश की फिल्मी दुनिया अभी शैशवावस्था में, और यदि व्यावसायिक नजरिए को छोड़कर सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए फिल्मों का प्रयोग हो तो यह कलात्मक संप्रेषण का अत्यंत प्रभावशाली माध्यम बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का जरिया बन सकता है। पीड़ित, शोषित और मुक्त लोगों की जुबान फिल्मों से बेहतर और कोई नहीं हो सकती। शायराना तबीयत और मानवतावादी विचारों ने उन्हें फिल्मों की ओर प्रेरित किया था, लेकिन फिल्मी संसार उनके शायराना मन और सामाजिक उत्सर्ग की दृष्टि से कोई आंतरिक संतुष्टि नहीं दे पाया। व्यावसायिक फिल्मों की बात पूरी तरह छोड़ भी दे तभी सामाजिक सरोकार से अनुप्रेरित फिल्मों में भी उन्मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर बहुत कम होता है। कथानक और निर्देश के नजरिए के बावजूद अभिनेता तकनीकी तत्व तो बहुत ही अधिक आश्रित रहता है। कैमरा उसे किस निगाह से देख रहा है, कौन कौन से कोण से उसकी छवि सबसे अधिक प्रभावशाली लग रही है, कौन से संवाद या दृश्य के तुरंत बाद उसका दृश्य कैसे जोड़ा जाए कि दर्शकों के मन पर होने वाला प्रभाव नाटकीय हो जाए, आदि आदि तत्व फिल्मों के प्रमुख हैं। ध्वनि प्रभावों, दृश्यों और प्रतीकात्मक चित्रांकन के जरिए संप्रेषण के नए और आकर्षक तरीके कैसे खोजे जाएं, ये और इस तरह के अन्य प्रश्न फिल्मी माध्यम सबसे अधिक प्रमुख हैं। फिल्मी अभिनेता गौण न होते हुए भी सर्वे सर्वा नहीं हो सकता, कदापि नहीं। उसे कैमरे की आँख के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभिनेता अपनी बात जिस समुदाय तक पहुँचाना चाहता है वह उसकी नज़रों से हमेशा उछल जाता है। फिल्मों के जरिए होने वाला संप्रेषण कच्छट कर टुकड़ों टुकड़ों में होता है, जिससे मानव अनुभूति सच्चाई नहीं बल्कि उस सच्चाई का भ्रम पैदा करने की कोशिश होती है। सच्चाई का यह भ्रम भले ही सच्चाई से बहुत दूर न हो, लेकिन सच्चाई के करीब भी नहीं होता। शायर के रूप में अपनी गजलों, नज्मों और श्रोताओं के समक्ष पेश करते हुए और उन्हें किसी खास मुकाम पर दाद हासिल करते हुए जो खुशी शायर को होती है वह सहज और प्रत्यक्ष है। वह खुशी रंगमंच की अभिनेता के लिए भी सुलभ है, लेकिन फिल्मों में अभिनेता के लिए पूरी तरह नामुमकिन। लेकिन हबीब तनवीर ने फिल्मों की दुनिया से मुंह मोड़ने का फैसला कुछ समय बाद लिया। उनके विकल्प खुले हुए थे, तब तक वे शायर की हैसियत से प्रगतिशील लेखक संघ से पूरी तरह जुड़ चुके थे। सज्जाद जहीर के घर पर हर रविवार प्रगतिशील लेखक संघों की बैठक होती थी, जहाँ लेखक अपनी नई कहानियां, नज्में, गजलें आदि पढ़ा करते थे, उन पर चर्चा होती थी। शायर की हैसियत से हबीब तनवीर प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन से पूरी तरह जुड़ चुके थे। अली सरदार जाफरी नया आदफ नाम के साहित्यिक पत्रिका का संपादन करते थे। उस पत्रिका में उनकी 6 गजलों का पहला सेट प्रकाशित हुआ, जिसकी अच्छी खासी चर्चा हुई। मुंबई के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय मुशायरों में शिरकत करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाने लगा। बहैसियत शायर उन्होंने अदब की दुनिया में अपनी जगह बना ली थी। दूसरी ओर इप्टा यानी इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन की गतिविधियाँ जोर पकड़ने लगी थी। भला सहनी, दीना पाठक, मोहन सहगल जैसे लोग रंगमंच पर सक्रिय थे। बीबीसी लंदन से वापस आकर भला सहनी पूरी तरह इप्टा को समर्थित हो गए थे। यह सन 1944-45 की बात है। हबीब तनवीर इप्टा से जुड़े तो तहे दिल से उसके होकर रह गए। इप्टा में उन्हें ऐसा क्या मिला जो फिल्मों के अभिनय, फिल्मी पत्रकारिता, रेडियो तथा दूसरे किस्म के कामों में नहीं मिल सकता था। इस संबंध में हबीब तनवीर कहते हैं, सिंगिंग नेटवर्क का माम, हम लोग तमाशा, लावड़ी, भवाई जैसी लोक विधाओं और गुजरात के लोकगीतों से परिचित हुए। इप्टा के कोंकणी दल में एक बड़ा मोहक संगीत दल था और कोंकणी संगीत भी था। मुझे वह बहुत अधिक पसंद आया। दल बहुत मजबूत था। मुझे संगीत से गहरा प्रेम है और इसलिए यह सब वास्तव में देखने परखने लायक ही था। मेरी साहित्यिक रुचि ही मुझको इस तरफ ले आई और फिर आखिरकार बोलियों की तरफ, क्योंकि मैं उनको सभी महान साहित्यों का मूल मानता था। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीर सभी ने आम लोगों के बोलियों में शक्ति और ऊर्जा अर्जित की। इन्वर्टेड कॉमा बंद। देश के विभिन्न अंचलों के संगीत और नृत्य ने युवक हबूब को कितना मुतासर किया होगा इसके बारे में ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके साथ ही भला सहनी और दीना पाठक जैसे लोगों ने उनके रंगमंची अनुभव को कितना समृद्ध किया यह भी कम महत्वपूर्ण बात नहीं। इप्टा के उस दौर में मुंबई में हबीब तनवीर ने अनेक नाटकों में अभिनय किया। जादू की कुर्सी जैसे अत्यंत सफल नाटकों के इम्प्रोवाइजेशन के जरिए तैयार किया गया और तभी वे इम्प्रोवाइजेशन की आंतरिक शक्ति से परिचित हुए। यह तकनीक उनके बाद काम में बहुत तरीके से नुमाया हो, बल्कि कहना चाहिए कि उनके निर्देशन सबसे बड़ी खूबी ये तकनीक बन गई। इप्टा के दौर में उन्होंने अनुभवों को हबीब तनवीर ने अनेक भेंटवार्ताओं और आलेखों में विस्तार से कहा है। खासतौर से ए लाइफ इन अ थिएटर और नाट्य शोध संस्थान को दिए गए एक लंबे इंटरव्यू में यह प्रसंग खासा नुमाया हुआ है। यह इंटरव्यू हबीब तनवीर एक रंग व्यक्तित्व के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुका है, इसलिए उन बातों को यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक घटना का जिक्र करना है जरूरी सा लगता है। हबीब तनवीर को इप्टा से जुड़े हुए कुछ ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ था। शायद इप्टा के बैनर में ये उनका दूसरा बड़ा नाटक था। यह नाटक चीनी कथा से प्रेरित तेलंगाना के आंदोलन से संबंधित था। नाटक के लेखक थे विश्वमित्र आदिल, जिन्होंने बाद में फिल्मों में काफ़ी नाम कमाया। निर्देशन कर रहे थे भला सहनी। नाटक था दखन की एक रात। अभी तनवीर एक 80-90 बरस की बूढ़ी की भूमिका अदा कर रहे थे जिसका जवान बेटा गोली लगने से मर जाता है। तब वह करुण विलाप करता हुआ रोता विलखता एक लंबा उत्तेजनापूर्ण भाषण देता है। कई हफ्तों तक नाटक का पूर्वाभ्यास चलता रहा लेकिन मल्लाह संतुष्ट नहीं थे। यह नाटक 1948 में इलाहाबाद में होने वाली इप्टा के कॉन्फ्रेंस में खेला जाने वाला था। इलाहाबाद पहुँचने पर फिर रिहर्सल चलता रहा लेकिन मल्लाह उनके अभिनय से खासे नाराज थे। अपने एक लंबे इंटरव्यू में हबीब ने इस घटना का जिक्र इन शब्दों में किया है। सिंगर इन्वर्टेड का माम रात 2 बजे तक रिहर्सल होता रहा। बलराज मेरे पीछे पड़े थे कि मैं बुढ़ा ठीक से नहीं बन पा रहा था। खासतौर पर बेटे के मरने पर मेरा रोना बहुत बनावटी लग रहा था। मुझसे हो ही नहीं रहा था कि बलराज ने मुझे जोर का एक तमाचा लगाया। गाल पर 5 उंगलियाँ उभर आई बोले अब रो और बुढ़ो। रोना तो आ ही गया था। रोते रोते डायलॉग बोला। डायलॉग खत्म होने पर उन्होंने मुझे लिपटा लिया और बोले अब तुम ठीक से रो सकोगे वरना तुम्हारा रोना इस कदर बनावटी हो रहा था कि मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। मैंने तुम्हें गुस्से में नहीं मारा था जानबूझकर मारा था। तुम्हें रोना नहीं आ रहा था। तुम्हें एक ऐसे तजुर्बे की ज़रूरत थी जिसे याद करके तुम रो सकते उस तजुर्बे को हुबहू उतार सकते रिप्रोड्यूस कर सकते। मैंने तुम्हें यह तजुर्बा कराया। स्तानिस्लावस्की ने याददाश्त के सिलसिले में मस्कुलर इमोशन मेमोरी की बात कही है। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता लेकिन तुम्हारे साथ यह तरीका आजमाने के सिवा कोई उपाय नहीं था। सिंगल इंटरप्रेट कामाबद्ध यह घटना अनेक दृष्टियों से व्याख्या की मांग करती है। पहली बात यह है कि 25 वर्ष की उम्र में जबकि हबीब तनवीर शायरी फिल्मों में अपनी पहचान बना चुके थे तब एक रंगमंच के अभिनेता के तौर पर उनके मन में अपने निदेशक बल्लाह सवानी के प्रति कितना आदर भाव था। नाटक रिहर्सल के दौरान अपने अभिनेता के से सच्चा अभिनय करवाने के निदेशक का कसकर चाटा मारना और उसको हिस्सा कर भी अभिनेता द्वारा कोई विरोध न करना मामूली बात नहीं। यह घटना हमारे आज के अभिनेताओं के लिए बहुत बड़ा सबक है कि अपने निदेशक के प्रति उनके मन में कितना आदर भाव और कितना श्रद्धा हो। इब्राहिम अलगाजी के बारे में उनके कट्टर रुख और गुस्से को लेकर अनेक घटनाएं प्रचलित हैं। स्वर्गीय ओम शिवपुरी सुधा शिवपुरी तप शर्मा मोहन महर्षि राजगोपाल बजाज वीरा मामोती जैसे रंगकर्मियों ने उनके गुस्से को सहकर अभिनय करना सीखा था लेकिन अलकाजी साहब ने कभी किसी अभिनेता पर हाथ नहीं उठाया था। फिर भी उनके गुस्से से लोग कांपते थे खासतौर से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के शुरुआती दौर में। बाद में अलकाजी साहब भी बहुत माइल्ड हो गए थे। क्या आज का हमारा अभिनेता बड़े से बड़े निदेशक पर इतने आदर भाव या समर्पण प्रभाव रखता है? गुरु और शिष्य का यह प्रगाढ़ रिश्ता अब टूट सा गया है। अभिनय सीखने के लिए उत्सर्ग और समर्पण की यह भावना कहीं देखने को नहीं मिलती। दूसरी निदेशक की बात यह घटना 1948 की है। बल्लाह सवानी तब तक स्लावस्की के मेथड एक्टिंग के बारे में पढ़ लिया था। भले ही वे उस पद्धति पूरी तरह मुतासिर नहीं थे लेकिन रंगमंच पर होने वाले नित नए प्रयोगों और विचारों को जानने समझने के लिए उनकी कशमकश उस घटना में जाहिर हो जाती है। हमारे आज के अनेक युवा निदेशकों को भी यह घटना सबक सिखा सकती है। आज के अधिकांश युवा निदेशक पीटी पिटाई लगे ऊपर चलकर संतोष कर लेते हैं। आज दुनिया में रंगमंच पर नए प्रयोग क्या हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं इसका प्रयोजन क्या है? भारतीय रंगमंच के संदर्भ में उसकी उपाध्यता कितनी है? उस तरह के प्रश्नों से हमारे अधिकांश युवा निदेशक टकराने से बचते हैं जबकि आज विश्व रंगमंच की नई से नई और ताजी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत सुलभ है। तीसरी बात इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है रूसी रंगमंच और बाद में समूचे विश्व रंगमंच को क्रांतिकारी विचार देने वाले निदेशक की पद्धतियों का उन्होंने अंधानुकरण किया। उसे प्रेरणा लेकर अपने तरीके से भारतीय रंगमंच को समृद्ध करने की ललक इस घटना में साफ झलकती है। हमारे अधिकांश युवा रंगकर्मियों का खासतौर से उन्हें जो आज के पाश्चात्य रीति नीति का अंधानुकरण कर रहे हैं यह प्रसंग बहुत बड़ा पाठ पढ़ा सकता है। खैर जब अपने खास मुद्दे पर लौट आए रंगमंच और रंगमंच के रंगकर्म के प्रति इतनी निष्ठा तथा शिद्दत के साथ हबीब तनवीर इप्टा के बैनर में नाटक करते रहे सोचकर हैरत होती है कि उस वक्त उन लोगों को मन में संघर्ष का ये मादा कितना गहरा रहा होगा। सामाजिक प्रतिबद्धता जिसे आज नारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और सुविधाओं तथा यश के लिए षड्यंत्र बुनाया जा रहा है वह किसी तरह की कुर्बानी की मांग करने वाला तत्व है। सुविधाएं और आराम तलब जिंदगी जीने के अवसर न मिलने पर संघर्ष करना एक बात है लेकिन सुविधाओं को दुनिया अपनी मर्जी से छोड़कर किसी खास मकसद के लिए संघर्ष की धधकती आग में कूद पड़ना एक दूसरी और निराली बात। दिलचस्पी की बात यह भी कि इस आग के दरिया को पार करने का हौसला रखने वाले लोग इक्के दुक्के सिर्फ एक कलाकार ही नहीं थे शायर और लेखकों अभिनेताओं संगीत निर्देशकों संगीतकारों नर्तकों का कितना बड़ा दल था कि सोचकर हैरत होती है। इप्टा के उस दौर की बात है हबीब तनवीर के शब्दों में। सिंगर इंटरप्रेट का वहाँ बम्बई के इप्टा के उन दिनों की बात कुछ बातें जिनसे मेरा ज़ाती ताल्लुक था जिन चीज़ों पर गालिबा असर पड़ा उनके बारे में बताऊं पहले। अपेरा हाउस के सामने एक हॉल है, शायद दामोदरान। वहाँ अलग अलग खोलियों में हम बैठते थे, अलग अलग खोलियों में अलग अलग विंग, मराठी विंग, हिंदी विंग, तेलुगु विंग, एक गुजराती विंग भी था। मराठी विंग में अमर शेख थे, सीधे गांव से आकर इस आंदोलन से जुड़े। अन्ना भाव साठे मजदूर तबके के आदमी थे, बड़ी उमदा कहानियाँ लिखते थे। गोवलकर थे, वो भी गांव से जुड़े हुए। फिल्मों के जाने माने गीतकार शैलेंद्र उन दिनों हिंदी विंग में थे, गाते भी थे। अब आप सोचिए कैसे कैसे लोग के साथ, पढ़े लिखे नहीं थे पर गांव से जुड़े थे, उमदा कहानियाँ लिख सकते थे। कल्पना किसी की बपोती नहीं होती। साठे के पास भाषा टूटी फूटी होती थी, वो मरीज से बोली जाती है उसी जुबान में लिखता था, पर बड़ी उम्दा चीज़ लिखता था। एक नयापन, एक तीखापन होता था उसमें। उस सब का यकीनन मुझ पर असर पड़ता था। जनरल बॉडी की मीटिंग में हम सब लोग एक साथ बैठते थे, एक साथ मिलकर सोचते थे। यूनाइटेड का मतलब उन दिनों के सामाजिक सोच के केंद्र में सामाजिक और राजनीतिक स्तर व मनुष्य के शोषण की व्यथा कथा ही होती थी। देश के विभिन्न अंचलों में गहरी तक जुड़ी हुई लोगों के संघर्ष अनुभव की दिशा निर्धारित करते थे। शायरी या कहानी लेखन के स्तर पर अभिव्यक्ति व्यक्तिगत सामर्थ्य और कौशल पर निर्भर करती थी, लेकिन रंग दृष्टि के लिए यह सामूहिक सोच एक नई राह की मांग करती थी। कैफी आजमी, शैलेंद्र, अली सरदार जाफरी, सज्जाद जहीर, सहेल लुधियानवी जैसे नामी ग्रामीण लोगों के बीच अभी तनवीर के शायरी परवान चढ़ने लगी थी। लेकिन रंगमंच के संबंध में वैचारिक आदान प्रदान के लिए उन्हें अपने सबसे निकट दीना पाठक लगी। वे उनकी हम उम्र होने के साथ साथ संगीत और नृत्य में भी गहरी दिलचस्पी रखती थी। रंगमंच के सरोकार को लेकर दोनों पूरी तरह एकमत थे। मुझे 20 दिसंबर 1999 को दीना पाठक से बातचीत करने का मौका मिला। उस लंबी और भावुकता भरी बात का सारा संक्षेप कुछ इस प्रकार है। सिंह एंड पटकामा। सर, 1945 में मेरी हबीब से मुलाकात हुई। अपनी उम्र से ज़्यादा परिपक्व लगे। नाटक में उनकी दिलचस्पी ने प्रभावित किया। शायरी बहुत अच्छी और नए विचारों वाली थी। इन्होंने शतरंज के मोहरे नाटक लिखा, जिसका मैंने निर्देशन किया और उसमें अभिनय भी किया। बस फिर बहुत जल्दी हम दोस्त बन गए, आज तक हैं। इस दोस्ती के कई रंग हैं। रंगमंच के बारे में उनकी उस वक्त की सोच को याद करके हैरान हो जाती हूँ। उस वक्त ये साफ नहीं था कि हबीब जिस नए मुहावरे की बात कर रहे थे उसका रंग रूप क्या होगा, दर्शक उसे कितना पसंद करेंगे, खासतौर से शहरी दर्शक। आम आदमी की जिंदगी में रचे बचे संगीत और नृत्य से प्रेरणा लेकर किए गए नाटकों में और साथ ही आम आदमी की जुबान में लिखे गए और किए गए नाटकों में कलात्मकता और साहित्यिकता की रक्षा हो सकेगी या नहीं, ये और इस तरह के कई सवाल मेरे दिमाग में उठते। और हबीब इन सारे सवालों का जवाब इतने आत्मविश्वास और सहजता से देते थे कि उनके विचारों से मतभेद हो ही नहीं सकता था। लेकिन उस नए मुहावरे वाले नाटक के स्वरूप के बारे में शायद उस वक्त हबीब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। गहरे अंधेरे में अपने संकल्प का चिराग लेकर नई राह की खोज में निकल पड़े थे। सच कहूँ तो हबीब ने ही मुझसे भारतीय रंगमंच की समझ दी। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बुलंद आवाज़ को आम आदमी तक पहुँचाने वाली रंग दृष्टि थी। हबीब की लगन और जिद कमाल की थी और अभी भी कमाल की है। मैंने उस बीज को फूटते अंकुराते और पनपते हुए देखा है जो आज तक विशाल बिछ बनकर हमको हम सबको छाया देने के काबिल बन गया है। सिंगिंग इन रेड कामा बंद। तीना पाठक के स्वर में कुछ ऐसी कशिश थी, ऐसा उन्माद था जिसे 50 साल पहले युवक हबीब के संघर्ष चेहरे की ताज़ा तरीन तस्वीर पेश करती। सच तो यह है कि दीना जी ने उस शाम हबीब के बारे में जिस भावप्रवणता से बात की उसे शब्दों में उतारा जाना मुमकिन नहीं है। इफ्तास हबीब तनवीर ने बहुत कुछ लिया तो उससे दिया भी काफ़ी कुछ। कितने ही नाटकों में अभिनय किया और कितने ही नुक्कड़ नाटकों के जरिए गली गली चौराहों में अलख सगाया। शांति दूत, कामगार, नुक्कड़ नाटक में जोहरा सहगल उनके साथ काम किया। उस वक्त वे लोग मुंबई के चालों में रहने वाले टिम्ड मध्यवर्ग की समस्याओं को देखते, उसे नाटकीय रूप देते और आसपास दिखलाते। इन नुक्कड़ नाटकों के जरिए उपटा कलाकारों ने रही उन्हें स्तेज आंखों में जिंदगी की चमक की ओर जिंदा होते देखा है। फिर क्या हुआ कि इतनी जबरदस्त कामयाबी मिलने के बावजूद देश का इतना बड़ा रंग आंदोलन बिखर गया। इफ्टा के इतिहास का वह पृष्ठ पूरे देश के रंगकर्मियों के चिंतन का विषय हो सकता है। इस संबंध में अलग अलग लोगों ने अपने अपने नजरिए बहुत कुछ लिया, लेकिन हबीब तनवीर ने अपने एक इंटरव्यू में इस घटना का बड़े मार्मिक शब्दों में वर्णन किया है। सिंगल इन्फ्रेड कामा। मेरी नज़र में सन 1947 के आसपास का समय इफ्टा के लिए बड़ा संकटपूर्ण समय था। आज़ादी मिलने के बाद ही पार्टी के नेता रणदीवे और पीसी जोशी की राय मुख्तलिक होने लगी। पार्टी में बड़ा अलगाव आया, इसका सीधा प्रभाव इप्टा पर पड़ा। इस दृष्टि से सन 1948 में इलाहाबाद में पार्टी की कॉन्फ्रेंस का बड़ा महत्व है। सारे देश के नेता जुटे थे, लेकिन आगे आने वाले सालों में पार्टी का क्या रवैया हो इस बारे में भी एक बात नहीं हो सके। चुनाचे पार्टी बढ़ गई और इप्टा के काम पर इसका सीधा असर पड़ा। इप्टा की अपनी कोई पॉलिसी तो थी नहीं, पार्टी जो करने को कहती थी वो करता था। मज़ा देखिए कि उस जमाने में कैसे कैसे लोग इप्टा से जुड़े थे। उदय शंकर, रविशंकर, नरेंद्र शर्मा, शंभू मित्र, सचिन शंकर, सभी तो तहे दिल से इप्टा के मूवमेंट से जुड़े थे। अपने को पार्टी का बिना तमगे वाला सिपाही मानते थे। लेकिन जब पार्टी में टूटन आई तो इनकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करें, क्योंकि इप्टा तो पार्टी का सांस्कृतिक विभाग, कल्चरल स्क्वाड था। स्वतंत्र रूप से इसकी कोई पॉलिसी नहीं थी। लोग निराश हो गए। रास्ता दिखाने वालों के अभाव में धीरे धीरे रास्ता छोड़कर वो अलग हो गए। सन 1948 इलाहाबाद वाली कॉन्फ्रेंस इप्टा की मौत थी, जिसका जनाजा निकला 1956 में। कई बार सोचकर हैरत होती कि क्या काम किया गया था इप्टा ने और कैसे खत्म हो गया चुटकियों में। इप्टा के इतिहास उदय शंकर के अल्मोड़ा के स्कूल का अपना महत्व है। देखिए ना, बंगाल में इतना बड़ा फैमैनी हुआ, इसको लेकर आंदोलन सा चलाया इप्टा ने। स्पिरिट ऑफ इंडिया नाम का प्रोग्राम तैयार किया गया, उसे लेकर सेंट्रल स्क्वाड मुल्क के कोने कोने में गया, लाखों रुपए जमा किए और यहाँ बंगाल में मदद की। दूसरा प्रोग्राम तैयार किया गया, इंडिया इमोर्टल। कितनी जबरदस्त शक्ति थी मंच की, जिसने पूरे मुल्क को जोड़ दिया था। लेकिन उस शक्ति का और भी इस्तेमाल नहीं किया गया। जितनी तेज़ी से यह सांस्कृतिक आंदोलन उठा था, उतनी ही तेज़ी से बैठ भी गया। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या किया जाए। यूनाइटेड का मामल, साहित्य और कलाओं के लगभग सभी विधाओं के शीर्ष व्यक्तियों का यह मंच जिस प्रकार बिखरा हुआ अत्यंत विचारणीय है, विशेष रूप से आज के संदर्भ में। जब तक हमारे देश की आज़ादी नहीं मिली, तब तक सभी कलाकारों की दृष्टि में दुश्मन का नक्शा साफ था। मकसद एक था कि विदेशी हुकूमत को मुल्क से बाहर खदेड़ना, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद दुश्मन का स्वरूप बदल गया था। अपनी ही हुकूमत के खिलाफ लड़ाई का तरीका उतना ही तीखा पैना नहीं हो सकता जो अंग्रेजों के खिलाफ था। आज़ादी के बाद सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रयोजन में अलग अलग हो गए और उनकी शक्ति बिखर गई। इप्टा के आंदोलन का वह पृष्ठ हमें रंगमंच के संदर्भ में कुछ बातें विशेष रूप से सोचने के लिए विवश करता है। राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होना एक बात है, लेकिन राजनीतिक दलों के कड़े नियंत्रण में कला की स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयत्न दूसरी बात। किसी राजनीतिक विचारधारा को संपोषित करना साहित्य और कला का प्रयोजन हो सकता है, होना ही चाहिए। लेकिन यदि राजनीति के लिए अपनी स्वतंत्र चेतना को साहित्यकार और कलाकार गिरवी रख देता है, तो साहित्य और कला का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। समूचे विश्व का कला इतिहास इसका साक्षी है। इस संदर्भ में स्वर्गीय शंभू मित्र की उक्ति याद आती है। मृत्यु के लगभग 2 वर्ष पहले वे मुझसे कुछ बातें खुलकर करने लगे थे। कलकत्ता में अपनी पुत्री सुश्री श्यामली मित्र की उपस्थिति में उन्होंने देश की राजनीति और कला के स्वतंत्र सत्ता के संबंध में अपने अनुभव बताए। सिंगल इनोवेटेड का इप्टा से अलग होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उनके विरोधी हो गए। कांग्रेस पार्टी को लगा कि उन जैसे लोग यदि कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करें और कांग्रेस का समर्थन करने को तैयार हो जाए तो पार्टी का कायाकल्प हो जाए। उस समय पश्चिम बंगाल के मार्क्सवादी विचारधारा का एक छत्र राज था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने भरपूर प्रयत्न किया कि शंभू मित्र उनके झंडे के तले काम करें। उन्हें अनेक प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन शंभू मित्र ने किसी राजनीतिक दल के लिए रंगमंच का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों ने शंभू मित्र को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। समझौता न होने के कारण शंभू मित्र जीवन भर इस तरह यातना का शिकार रहे। सिंगल इनपुट का मापन, ऐसा नहीं कि इप्टा के विघटन के बाद हबीब तनवीर ने अपने कार्य क्षेत्र नहीं बदला। यद्यपि उनके पास विकल्पों की कमी नहीं थी, तथापि वे निरंतर रंगकर्म ही करते रहे। जैसे स्कूल ऑफ आर्ट्स जैसी अनेक संस्थाओं और दूसरे समूहों के लिए वो फिर नाटकों का निर्देशन करने लगे। फिल्मों में अभिनय करने का प्रलोभन बहुत बड़ा था। आर्थिक संघर्ष करने कोई जरूरत भी नहीं थी। अनेक प्रगतिशील लेखक जिनमें राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, इस्मत सुगताई, अली सरदार, जाफरी शैलेंद्र आदि शामिल थे, पटकथा लेखकों के रूप में फिल्मों में जा रहे थे। उनकी मांग बढ़ती जा रही थी। साहिर लुधियानवी, कैफियाज जैसे शायर अपनी शर्तों पर फिल्मों में गीत लिखने लगे थे। पलाश रानी के अतिरिक्त अनेक अभिनेताओं को फिल्मों में आकर्षित कर लिया था। मोहन सागर फिल्मों के सफल निर्देशक के रूप में स्वीकृत हो चुके थे, लेकिन हबीब तनवीर को यह विकल्प रास नहीं आया। उनका कारण क्या था, उन्हीं के शब्दों में, सिंगल इनवर्टेड कॉमा, क्योंकि उस वक्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि इन दिनों के सिनेमा में कलाकारों की स्वतंत्रता नहीं है। आप जैसे चाहते हैं वैसे अभिनय नहीं कर सकते थे और न ही जैसे चाहें वैसे निर्देशन। प्रोड्यूसर जिसे कोई कलात्मक समझ नहीं थी और जो केवल थैली शाह था, सिर्फ पूंजी जुटाने वाला, वह निर्देशक अभिनेता और लेखक के काम में दखलंदाजी करता। मैंने सोचा कि मात्र एक अभिनेता के नाते भी तुम्हारी अपनी कुछ खास सामाजिक जिम्मेदारी है जिसे तुम चरित्र द्वारा ला सकते हो, लेकिन फिल्मों में इस तरह की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। सिंगल इनवर्टेड कॉमा बंद। हबीब तनवीर के संघर्ष की यह भंगिमा बड़ी महत्वपूर्ण है। वह अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता चाहते थे। सामाजिक और वैचारिक प्रतिबद्धता के बावजूद उस पर किसी प्रकार का अंकुश उन्हें स्वीकार नहीं था। उनके पास दिवंगत अनुभवों की एक पिटारी थी जिस पर उन्होंने बड़ी बड़ी अनेक चीज़ें बड़े जतन से एकत्र की थी। उनका सही और कलात्मक उपयोग करना उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत थी। अपने अनुभवों को इस पिटारी को हाशिए पर छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं थे। फिल्म दुनिया के चकाचौंध, माया, आकर्षण, सम्मोहन सुविधाओं को एक झटके से तोड़कर उन्होंने मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया। इस संबंध में उनकी यह उक्ति उनके वैचारिक भूत को रेखांकित करने की पूरी तरह सक्षम है। सिंगल इनवर्ट कामा। जो भी हो, सही या गलत, मैं इस बात पर मुतमइन था कि मेरे पास कहने के लिए कुछ था। जैसा भी हो और मुझे जो कुछ भी कहना था, सौंदर्य शास्त्र में, प्रदर्शनकारी कलाओं में और साथ ही सामाजिक रूप से, राजनैतिक नज़रिए से, इसका माध्यम सिनेमा नहीं था, वह थिएटर था। यह एक बहुत साफ भूत था मन में 5वें दशक के प्रारंभिक दिनों में, जो मुझे दिल्ली ले आया। इनवर्टेड कामा बंद।